उनकी तो बात छोड़ो, यहाँ पर मजिस्ट्रेट बैठे हैं, अभी सुना कहीं विधानसभा में अध्यक्ष बैठे हैं, कोई शराब पी करके शराबी और जाकर के पहुंच गया वहाँ और कहा मैं अध्यक्ष हूँ, मैं उस चेयर पर बैठ गया।
दिल्ली में हुआ था, बोले मैं मुख्यमंत्री मदन लाल पुरानी के साथ,
कोई कह रहा है मैं राष्ट्रपति में बैठ गया, हो गया अभी इसको लोग पागल कहेंगे। उसी तरह से कोई मूर्ख जी यदि ये कहता कि मैं ब्रह्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलितम ब्रह्म तत्तम असि, तो इसे प्रभु को क्रोध होगा ना क्या होगा, इसलिए प्रभु को क्रोध हो जाता है। इसलिए ये भी कंकर और कंकर के समान एक समय गुरु जी के साथ में हम लोग कहीं प्रचार में गए थे। आजकल तो तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ नहीं देखते, कोई शास्त्रार्थ नहीं अभी करता, पहले शास्त्रार्थ होता था,
शांत पड़ेगा तो शास्त्रार्थ
करेगा, बड़े भयानक बड़े बड़े सब प्रस्ताव जिसमें कि हजारों लोग आते थे। तो गुरु जी के साथ में कहीं गया तो वहां पर बड़ा भारी बड़े बड़े पंडित लोग आए और इधर से गुरु महाराज जी थे, हम लोग दो चार आदमी थे, बड़ी भारी सभा लगी। तो उसमें विचार हो रहा था, एक रिटायर्ड कोई जज थे, वो मायावादी कुछ भाव के, उन्होंने कहा कि सर्वम खलितम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं आप भी ब्रह्म है सब कुछ। गुरु जी ने उनको समझाया ये आप पैखाना है, तत्ती है आप तत्ती कैसे, अरे मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म नहीं आप तत्ती हैं, तो कैसे, उन्होंने कहा एक चींटी है, चींटी गुड़ खाने के लिए गई, गुड़ माने कैसा गुड़, पतला गुड़, राब जिसको कहते हैं, आज बंगाल हो गया कि तंबाकू उसे बनते हैं मीठा गुड़ पतला सा गुड़ दवा
दिखता
सीरा, तो वो सीरा खाने के लिए गई और वो उसी में लंबी पक गई और लिपट गई जब ना, तो वो सिराई जैसे होगी, दूसरे बंदर आया उसको लपट करके खा लिया, वो चीटी फीटी सब उसके लिए। यहां लोग भी यदि खाएंगे तो क्या करें, चीटी निकलेगी उसमें, चीटी का कुछ करके उसमें मिल गया सिम मिल गया सब निकल गया, वो चीटी एकदम बन गई मीठा। अब यदि वो चीटी गुड़ में ही भर गई लपट गई तो उसको ये मीठा लगेगा, अब उसको जब तक अलग थी खा रही थी तब तक तो मीठा है, और जब उसमें निपट करके और गुड़ ही बन गई और बंदर ने से खा दिया गुड़ समझ करके, अब उसको मिठास का ज्ञान रहेगा नहीं रहेगा। और एक चींटी टट्टी में गई पत्नी में और उस निपट करके टट्टी बन गई, तो टट्टी का दुर्गंध उसको आएगा, तो ऐसे ही आप ब्रह्म बन गए तो ब्रह्म बन गए तो वो टट्टी है या आनंद है आपको कैसे पता, आपको तो पता ही नहीं लगेगा। इसलिए जब आनंद की अनुभूति नहीं रही पुस्तक रूप में तो टट्टी की भी अनुभूति नहीं रहेगी, तो दोनों एक ही बात है। एक घंटा तक वेद परिषद और सब वेदांत के सूत्र और मंत्र सब करते करते थक गया, किंतु वो प्रमाणित नहीं कर सका जब उनका ब्रह्मा आनंदमय है, किंतु कृष्ण आनंदमय है, भगवान आनंदमय है, क्यों हम कहने वाले हैं कि कृष्ण को देख करके उनका रूप देख करके उनको जाते हैं, इसलिए कहने तो, किंतु ब्रह्म होने के बाद में कौन कहने वाला है कि यह ब्रह्मा आनंदमय है, है? जितने आदमी हैं वो सभी ब्रह्म हो जाए तो ब्रह्मा आनंदमय है ये कहने वाला कौन रहेगा। इसलिए जितनी भी अवज्ञाएं हैं सब में गंदी चीज ये है जो मंदिर के दीवार में लगी हुई है, क्या है ये, जैसे अलकतरा होता है ना, कोलतार कोलतार गोलतार होता है कोलतार गोलतार या गोलतार, और लोग दीवार पर या कहीं लग गया और एक वर्ष हो गया उसमें लगा हुआ, वो छूटेगा जल्दी पानी देने से, पानी देने से और कठिन बन गया, और झाड़ू से छूट जाएगा कि नहीं, ये ऐसा है, ये मुक्ति की वांछा सबसे अधिक वांछनीय ये गंदी चीज है शक्ति के लिए। महाप्रभु जी ने क्या किया, रगड़ करके त्रिरासन तेज देकर के उठाया, रगड़ करके साफ करके उसको, इसे मुक्ति की इच्छा सबसे खराब है, इससे बढ़कर के और कोई खराब चीज नहीं। विशेष करके एक चीज और बतला रहे हैं, बहुत से लोग मन अधिकांश लोग धर्म के नाम पर हरिनाम विग्रह और भागवत बेच करके जीविका निर्वाह करते हैं। दुकान पर बेचने का नहीं, जब विग्रह दुकान पर बिक रही है भागवत भी बिकती है ऐसा नहीं, कीर्तन करके पैसा लेना, भागवत पढ़ करके पैसा लेना, मन पर देख करके, ये बहुत बड़ी भारी बीमारी और गंदापन है। इन्हें धर्म के नाम पर हरिनाम को बेचना, मंत्र को बेचना, विग्रह को बेचना और भागवत जीवी होना, ये लोगों को ठग करके धन लेना ठाकुर और भगवान के नाम पर, भागवत के नाम पर, ये सबसे बड़ा अपराध है। ऐसे लोगों के हृदय में भक्ति नहीं आती, इसलिए इन सब चीजों से हमें दूर रहना। दूसरे व्यवसाय के द्वारा हम जीविका अर्जन कर सकते हैं, सब कर्मों के द्वारा, अगर यदि ऐसा करें कि भागवत पाठ करेंगे पैसा आएगा जीवन निर्वाह होगा, भक्ति सुख जाएगी, इसे ऐसा नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं, लोग कीर्तन कराते हैं तो कहते हैं कीर्तन चलेंगे हमारा एक रुपया और करताल का दो रुपया और बड़ा मजीरा है ना इसका चार रुपया और मृदंग का दस रुपया, तो एक
दो तीन
तीन
चार सात
सात
दस
दस बीस रुपया देंगे एक एक व्यक्ति के लिए, तो हम चलेंगे अब जाकर के कीर्तन करेंगे और पैसा लेंगे उसे, तो अच्छा जे तुम मजदूरी करके जीविका निर्वाह करके भगवान का भजन करते, इसलिए सब चीजों से दूर रहना चाहिए। हम लोग पढ़ना चाहते हैं वेद वेदांत और भागवत, इसलिए इसीलिए यह हम भी बुद्धिमान होकर के संस्कृत का अलग अलग उच्चारण करेंगे और सब लोगों को मुक्त कर देंगे और राष्ट्र लोग प्रतिष्ठा करेंगे, भक्ति की वृद्धि के लिए नहीं, इसलिए भक्ति वृद्धि के लिए यह सब किसी की कोई जरूरत नहीं। पहले मैं भी समझता था ऐसा है कि देखता है कि इसमें जरूरी भक्ति की वृत्ति उनको होनी चाहिए, ये कैसे आए, इसलिए प्रभुपाद जी निर्देश कर रहे हैं और इसमें का निश्चित ढांचा, निषिद्धान जो निषिद्ध है भक्ति के लिए वो क्या, स्त्री स्वामी एक अपराधी कृष्णा भक्त अर्थात स्त्री पुरुषों का परस्पर संग आसक्ति, एक विवाहित स्त्री के अतिरिक्त सबको मां बहन बेटी और उसी तरह से स्त्री भी उसी प्रकार से पिता भाई और पुत्र इस रूप में परस्पर देख करके चलते, नहीं तो अन्नाभिलाषी हो जाएंगे। इस प्रकार से जन्म जन्मांतरों की धूली हमारे हृदय में लगी हुई, हृदय निर्मल नहीं होता, हृदय एकदम मैला हो जाता है। महाप्रभु कहते हैं कि पहले इसको दूर करो, कैसे दूर करो, भक्ति गुरु ठाकुर जी ने बहुत मुश्किल से अनुसंधान करके एक झाड़ू निकाला, अनुसंधान किया, इन्वेंशन किया, वो झाड़ू क्या किया, नामहट झाड़ू, उसने क्या किया, एक एक ग्राम में पांच पांच छह छह लोगों की टोली बनाई श्रद्धालु लोग, कहा जैसे तुम लोग नाम संकीर्तन करना सवेरे एक बार घुमाना नाम करते हो, ऐसे ऐसे हजारों गांव में नाम हट पर खुला, नाम हट नाम माने नाम का बाजार, और उन्होंने कहा कि मैं झाड़ूदार हूं, झाड़ू देने वाला मैं, झाड़ूदार कैसा होना चाहिए जो हृदय तक उसका झाड़ू पहुंच जाए, झाड़ूदार होना भी साधारण काम नहीं है, जो सब लोग का हृदय निर्मल करते। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने झाड़ू दिया सबके लोगों का हृदय निर्मल कराने की चेष्टा, उसमें जो काम छोड़ है आलसी है जो नहीं चाहते उसमें किसी प्रकार से भाग कर भी निकल करके दौड़कर चले जाए। महाप्रभु जी क्या करेंगे, इच्छा करने से तो कर सकते थे किंतु इनकी जब नौदीप ने आरंभ किया है बलुआ और प्रशासन भी छात्र संस्कृत के न्याय के यहां से भाग करके निकले, कुछ पुरी में पहुंच गए और कुछ बनारस में पहुंच गए। आपने जो तुम देखो भाग करके कहा जाता है वहीं पर मैं भक्ति की बांध ले जाकर के डुबाऊंगा, इसलिए पहले गए कहां
जगन्नाथपुरी
और वहां पर सात धर्म भाषाचार्य को परास्त करके वहां पर भक्ति के बारे में सबको डुबा दिया और उनको भी डुबा दिया और इसके बाद में वो बाढ़ की धारा की धर मुड़ी
काशी के तरफ,
उत्तर भारत में काशी और काशी में आकर के
प्रकाशानंद
7000 शिष्यों का गुरु और ये ब्रह्म ब्रह्म कह रहा था। तुमने कहा कि यहां पर तुम्हारा ये फल बिक्री नहीं होगा, अरे सस्ते में दे जाऊंगा, बहुत सस्ते में, और ये सस्ते में कोई नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा तो मैं लौटा करके ले हमें देखू तो बस उन्होंने ध्वनि आरंभ किया। फल लोग काटे हैं उन्होंने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे,
ऐसे ही नहीं हाथ उठा करके हरि बोल, आंखों से आंसुओं की धारा गिर रही, कभी नृत्य कर रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से किया ये सारी काशी की समस्त जनता उनको देखने के लिए आई और जो आया उस भक्ति की धारा में सब इस तरह से इन लोगों को भी परम भगवत मना दिया, भारत वर्ष में सबक पूर्ण करके सबको भक्ति बन दिया। यह है संवार्जनी हर संकीर्तन कल युग में केवल एकमात्र ऐसा है, यदि नियमित रूप से उन्हें करें तो ये सब दोष दूर हो सकते हैं, भगवान को राधा कृष्ण को हृदय में बैठा सकते हैं, इसे बढ़कर के जगत में हमारा कोई कर्म नहीं आज नहीं कर मंसा दास है कोई
परमात्मा प्रतिभाशाली परम धार्मिक परम तेजस्वी प्रजापालक और जो गुरु होना चाहिए किंतु एक कुछ जाति से ये पता चला इस भूमंडल में समुद्र के किनारे नील पर्वत के ऊपर में तो नील माधव विग्रह है उसको क्षेत्र मंडल कहते हैं।
नीलमल माधव जी साक्षात भगवत भगवान उनको दर्शन करने से ही सब मनोवांछाएं पूर्ण हो जाती है। उसके पास ही एक रोहिणी सरोवर है जिसमें स्नान करते ही आदमी चतुर्भुज होकर के वैकुंठ लोक में चला जाता है और वो अंतर ध्यान हो गया था। उन्होंने अपने चार लोगों को लगाया कि ये किधर में है जिसमें उनके पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति, कोई कहते हैं जैसे वो विद्यापति वो स्वयं पुरोहित थी और कोई कहते हैं उनका लड़का, किंतु स्कंद पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा में उनको पुरोहित का छोटा भाई बतलाया और लोग सब दूसरी दिशाओं में गए, ये पूर्व दिशा में गए और वहां पर जाने पर समुद्र के किनारे पहुंचा, बहुत ही सुंदर पर्वत रमणीय स्थान देख करके उनको हुआ न हो न हो यही पर कहीं ये ठाकुर जी हो सकते। रात में ठहर गए एक शबर के यहाँ और शबर उनकी पूजा करने जाता था, उन्होंने उस चीज को पता लगाने के लिए शबर की लड़की से प्रीति कर और कुछ दिनों में ही उसका उसके साथ में विवाह भी हो गया उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा पहले ही हमारी शादी हो गई है या ब्राह्मण हो या क्या। इसके बाद में अपनी पत्नी से कहा, तुम पिताजी से पूछो ये वो कहाँ पर जाते हैं। पिताजी पहले नहीं बतलाना चाहते किंतु अंत में बीस पान करके मर जाऊंगी इसलिए आपको बतलाना पड़ेगा। उनकी आंख बंद करके इसको ले जाकर के दिखलाते हैं और वो आंख बंद करके ले गए और जब वहां गया तो उसकी सुगंध पा करके और ठाकुर जी का दर्शन करके मुक्त हो गया और वो पुष्प चुनने के लिए गए और तिलक के लिए चंद्रमा करने के लिए गए। इतने में ये देखा कि एक कौवा उसी कुंड के ऊपर में बैठा हुआ था और उंगर आता वो गिर गया, बस गिरते ही वो मर गया और उसके शरीर से शंख चक्र बना पद्म लिए हुए एक शिव विग्रह निकली और वो गरुड़ आए तो उनको बैठा करके वो पति गए और वो देखा कि ऐसी बात हुई, बस साथी साथियों के पेड़ पर चढ़ने लगा। इतने में आकाशवाणी हुई, तुम्हारे द्वारा बहुत काम होगा, काम वक्त त्याग करो। साथी साथ वो आ गया, उसका ससुर भी आ गया और उन्होंने दर्शन करा करके और फिर घर ले गया आश्रम करके। अब ये राजा के पास में जाने लगे खबर देने के लिए, उसने कैद कर लिया किंतु आकाशवाणी हुई भीम माधव की, नहीं इसको तुम छोड़ दो, इसमें बहुत ही जगत का कल्याण हो। तो उसने छोड़ दिया, अपनी पत्नी को उन्होंने आश्वासन देकर कि मैं जल्दी आ रहा हूँ। राजा आए, जब तक वो आते हैं इतने में समुद्र की लहरों से बालू से एकदम सख्त जगत है, मंदिर लुप्त होगा, पहाड़ भी दब गया और गांव भी दब गया, सब कोई चिन्ह नहीं है। उसने प्रायः प्रवेशन किया बिना खाए पिए समुद्र के किनारे कुश पर बैठ करके और आराधना कर, मैं मर जाऊंगा यदि आपका सुनो। इतने ब्रह्मा जी आकर के उनको वैकुंठ लोग ले गए और वहां पर नील माधव का दर्शन किया। उन्होंने प्रार्थना की आप चलिए, उन्होंने कहा मैं अब इस मूर्ति में नहीं जाऊंगा, मैं अब चार मूर्ति में जाऊंगा, जगन्नाथ बदे सुभद्रा और सुदर्शन चतुर्वेदी। कोई चिंता मत करो, मैं एक पेड़ की घर के रूप में गोलाकार जाऊंगा लाल, उसमें चक्र के चिन्ह रहेंगे, तुम वहां पर जाना समुद्र के किनारे बिल्कुल करके हमारे मूर्ति बनाए, सब काम आने आ सकते। उन्होंने पहले से मंदिर बना रखा था, जाने के पहले जब आए तो देखा कि से दूसरा एक राजा कहा जो मैंने मंदिर बनाया, ये कहता है कि मैं मंदिर बना। अब दोनों में कुछ विवाद हुआ, इतने काकभूषुंडी जी का वट वृक्ष पर थे अक्षर को अक्षर, उन्होंने आकर के कहा कि नहीं ये तो नृदिन ने बनाया था, बालू में डूब गया था, तुमने पीछे से उसका उद्धार किया और उसमें कुछ रिपेयर किया है, इसलिए ये मंदिर तुम्हारा नहीं बल्कि उन्हीं का आज जाए, उन्हीं का आज जाए। वो राजा अंत में लज्जित होकर के वहां से चला जाएगा ना, गालव गालव उनका नाम। इसके बाद में वहां पर न जाने कितने मंदिर हुए आज तक, लाखों बार, वही पुराना मंदिर वो नहीं है, लाखों बार वहां पर हुए। जैसे कृष्ण जन्मभूमि में 5000 वर्ष पहले कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाथ जी ने वहां पर एक मूल मंदिर बनाया केशव आदि केशव, उस स्थान पर आज 5000 वर्ष में कितनी बार वो बदला। अभी ये जो मंदिर था जिसको औरंगजेब ने तोड़वा करके मस्जिद बनवाया, ये 14वीं सदी में बनी और उसको भी 14वीं सदी में होते हुए 19वीं सदी नहीं, तो औरंगजेब जब वो उसको तोड़वा दिया 14वीं सदी में बना था, 14, 15, 16 300 वर्ष के बाद उसको तोड़वाया। अब उसके बाद में फिर अभी हाल में हम लोगों के सामने ये मंदिर बना, तो 5000 वर्ष में इतना अदल बदल हो गया,
तो ये भी तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 100-150 वर्ष सीमेंट
तो वो मंदिर करोड़ों वर्ष पहले सत्यु के आदि का, वैसे कहो तो इस कितनी बार प्रलय हो गया, एक दो बार नहीं, कितने ब्रह्मा बदल गए, तब से वो मंदिर वन स्थान और वहां पर बीच बीच में बनता है ऐसे करता है। इसे अभी जो मंदिर बनाई है 14वीं सदी का ये मंदिर है, जिससे अब पत्थर गिर रहे हैं, वो पंजिका उदाला पंजिका या क्या नाम है उसका, जगन्नाथ जी की वो पंजिका होती है, माने उसमें विवरण रहता है।
अच्छा,
उसके जो जो कुछ होगा, जो राजा होगा, जो होगा, जैसे मंदिर की सेवा होगी, प्रतिवर्ष रथ यात्रा कैसी होगी, सेवा कौन कौन कर रहा है, ये सब उसमें लिखा जाएगा। पंजिका, पंजिका माने वो पुस्तक के आकार में वो उसको लिखने वाला एक आदमी, वो मुझको याद नहीं आ रहा है कौन सी पंजिका उसका नाम है, उसमें ये सब विवरण रहता है। तो उसमें आज से कितने वर्ष पहले उसमें लिखा है, जो अमुक साल में एक पत्थर बीच से गिर जाए, अभी हम लोग गए थे तो देखा जी वो पत्थर लंबा छोड़ा एकदम ठीक ठाकुर जी के सिंहासन के सामने, कम से कम तो 20 फुट लंबा,
तो वो तो भविष्यवाणी नहीं होती।
हाँ, तो वो गिर गया ना, तो ये मंदिर कब ये गिर जाएगा ये इसको नहीं लिखा, कोणार्क का मंदिर कब बना है, कब गिरेगा, कब क्या होगा, उस मंदिर का उसके अनुसार में भविष्यवाणी भी है, और भविष्य में क्या होगा और जब जब जो जो हो रहा है उसका भी विवरण
उसमें लिखा जाता है।
तो उसमें ये जगन्नाथ जी के प्रकट का इस सब का भी वर्णन उसमें है, किंतु नंदद्रुम वाला तो उसमें है, जो कि स्कंद पुराण में जो बतलाया गया है उसके अनुसार में है, थोड़ा सा कहीं की तरह पद्म पुराण में है, उत्तरखंड उत्तरखंड में कुछ है और कुछ है इसमें, इसमें पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा है, तो दोनों में है थोड़ा सा अंतर है, तो करीब करीब एक ही जैसा मैंने बताया। अब वो उन्होंने आकर के वहां पर बैठ गए, एक मोटा सा एक पेड़ का घर, कम से कम तो 8-10 गज लंबा, बहुत भारी विशाल, और लाल रंग का उसमें चक्र के चिन्ह वो बांटा करता है। इन्होंने बहुत चेष्टा की उठाने के लिए, हाथियां लगाई जिसको उसको निकलवाए, उसको बांध करके लोहे के रडों से, और उसको हाथियों को लगा करके निकलवाने की चेष्टा की, नहीं निकला। सेनाओं को लगाया, बड़े बड़े लोगों को लगाया, किंतु कुछ भी नहीं। जैसे क्रेन से उसमें ऊपर में पत्थर है ना, कहीं कैसे लगते हैं, तो उस सिस्टम से भी लिया नहीं, आकाशवाणी जैसे नहीं होगा, जो पहले सबस से बात करते थे उनको बुलाओ, और जो कि राजा को खबर दिया उसको बुलाओ, वो लोग आकर के कुछ व्यवस्था
कॉपी जैसे
होता, तो उनको बुलाया गया। तो एक तरफ में वो लगा सब, उसका नाम था
विश्वावसु,
और एक तरफ में विद्या
ज्योता शक्ति।
हाँ, लगे मैंने क्या, उनकी पूजा विधिवत की, अर्चन किया और उनको कहा कि आप स्वयं ही प्रभु हैं, आप स्वयं रथ पर बनाए, वहीं पर सोने का रथ बनाया था उस पर लेकर के निकट में था, बस दोनों लगे प्रार्थना किया, थोड़ा सा उठाया अपने आप रथ में उठ करके बैठ गए, और बैठ करके फिर उनको लाया गया मंडप में, और मंडप में रखा गया, देश विदेश के लोगों को निमंत्रण किया गया, ये मूर्ति सुंदर से सुंदर बनानी है, आए सब औजार लेकर के अपना अपना यंत्र, और जब पसले से रूखानी में जबकि ऐसा दिया तो छंड करके टूट गया और टूट जाए, लोहा से भी अधिक कड़ा, अंत में जब कोई किसी से नहीं हुआ तो यह बतलाया जैसे मूर्ति स्वयं अपने आप प्रकटित होगी, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, अंत में जगन्नाथ जी ही स्वयं यानी माधव प्रभु ही स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में आए, गौर वर्ण का बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण, और वो आकर के बतलाया कि मैं तो कारीगर हूं, यदि आदेश हो तो मैं इनको प्रकट करूं। इन्होंने राजा ने और रानी ने कहा कि हाँ कीजिए, एक मंडप बनाओ और मैं 21 दिन उसके अंदर लगा करके बनाऊंगा, दरवाजा बस खोलना। उन्होंने कहा कि ठीक है, बड़ा भारी मंडप बना करके वो भीतर ले गए उसको और उसमें वो घुसा और बाहर भीतर से कबाड़ बंद कर। 5-6 दिन 7 दिन बाद रानी ने कहा अरे खाया पिया नहीं और उसमें मरेगा, एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, कोई ठुक ठाक तो शब्द हो रहा ही रहा, शायद वो अब तक दम उसमें उसका हो गया है, अंत हो गया हो। राजा ने बहुत समझाया, ठाकुर जाओ 21 दिन के बाद में खोलने के लिए, 7 दिन 8 दिन रानी रोज रोज करती है, अब 14वें दिन वो मानी नहीं। राजा को आज से आप क्या कर रहे हैं, ये ब्रह्म हत्या कर रहे हैं, आज जल्दी खोलिए जो कुछ होगा देखा, हमको मुक्ति की जरूरत में ब्रह्म हत्या लग जाएगी, हम लोग मरेंगे। तो राजा ने तोड़वा दिया दरवाजा और ब्राह्मण मुस्कुरा करके बस यही तक होना था, आपने ये गड़बड़ कर दिया, तो ये प्रभु की इच्छा से हुआ है। केवल आंख बनी थी, नाक बनी, हाथ कभी नहीं बना, पैर नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। 5 मूर्तियां थी, 4 जगन्नाथ, बीच में सुभद्रा देवी और बलदेव देवी, बलदेव इनको चक्र को बना दिया था, ये वो चक्र ठीक है, और इन तीनों का पहले आंख बनाई वैसे, अब आंख भी बन जाती ऐसे, तो अभी गोल गोल अभी बनाया था और धीरे 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 बना रहा था, इसे 14 दिन में वो हुआ नहीं, और ठाकुर जी की इच्छा जो उसी रूप में है, उसी रूप में हंस करके बोलकर ध्यान में, फिर उसी को वहां पर प्रतिष्ठा किया गया। वर्ष में एक दिन रथ पर चढ़ करके वो वन विहार के लिए आए, अभी तक इसी रूप में चल रहा है, किंतु महाप्रभु जी जब आए तो उसमें एक और उपाख्यान उसमें जुड़ गया है। जगन्नाथ जी को पहले बैकुंठ के अधीश्वर नारायण के रूप में माना जाता है और उनकी पत्नी बिमला देवी वो लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और इस रूप में बलदेव जी को भी उनके भाई के रूप में माना जाता है, इस रूप में उनकी पूजा होती है, औरत भी निकलता था। महाप्रभु जी आए तो उसमें एक और उपाख्यान जुड़ गया, बृहद भगवतामृत, महाप्रभु जी की भावना के अनुसार वो क्या हुआ, वो इसमें ये जुड़ा, महाप्रभु जी ने जोड़ा। अब तक वो अर्चन मार्ग था और ऐश्वर्य भाव का वो सब उद्दीपक था, महाप्रभु आए अब भाव मार्ग में गया, अनुराग भाव उसमें लाया। कृष्ण और बलदेव एक दिन द्वारका में राजसभा में बैठे हुए थे, इधर 16108 महिषियां रोहिणी मैया को लेकर के बैठी और उदाहरण देने लगे, उतने में कंस की मैया भी आ गई पद्मा, और ये बात चल पड़ी रोहिणी और रुक्मिणी जी और सत्यभामा ने ये कहा हम लोग विश्व में सबसे सुंदरी हैं, युवती हैं, समस्त प्रकार के गुणों वाली हैं और 16108 हैं, किंतु कृष्ण को कोई भी प्यारी नहीं, हम लोग असमंजस में हैं कि हमको प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, तो गोपियां उनको वशीभूत करने में समर्थ हैं, प्रेम से वशीभूत कर लेती हैं, उसके विषय में वो समर्थ हैं, इसलिए वो समर्था रहती गई हैं और ये समंजसा रहती है, ऐसा क्यों होता है, ग्वालिनों में क्या विशेषता है, वन वन में विचरण करने वाली कोई सदाचार नहीं, जिनमें कर्म कुशल भी नहीं है। और वन जंगल में रहने वाली कितनी सुंदर होगी, और फिर भी कृष्ण हमें नहीं चाहकर इच्छा नहीं है जब
ब्रह्मचर्य कितना सुंदरी होंगी,
ब्रह्मचर्य कितनी सुंदरी होंगी, और उन्हें क्या गुण हो सकता है। प्रेम करना तो सीखा हम लोगों को राज परिवार में राजघराने होकर के राजकुमारी जैसे शरीर, तो उन्हें क्या होती है इसको भैया बता रहे। प्रेम की कहानियां वृंदावन में कृष्ण और गोकुल के संबंध में जो बताना आरंभ किया पूर्व रात से आरंभ कर और अभिशाप से लेकर राष्ट्रीय तक उनकी कितनी लीलाएं जो जिसके द्वारा कृष्ण प्रसन्नित हो सकते हैं, और कृष्ण वहीं पर रस के स्वरूप है, ये सब चीजें बताते हैं। अपने हाथों आंखों से देखी हुई बातें हमें यशोदा जी के घर में आती में आ रहे, उनका कैसा प्रण है। कृष्ण गो चार के लिए जाते हैं तो ये मैया भी बहुत दूर तक जाती है, उस समय गोपियों के साथ में उनका कैसा संपर्क है, और कुछ इधर उधर से सुनती भी है उनकी सारी बातों को बता, यहां तक कि राष्ट्र की बातें भी बताने लगी। जो कृष्ण का ऐसा सुंदर रूप मत वाला हो ब्रज के अतिरिक्त का कहीं नहीं हो सकता संभव कर दे। एक झलक दिख रहा था नवीन वृंदावन में तो सप्तभामा और पद्मा तक भी द्रौपदी कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ता था, विशेष करके दास रस का भाव ये प्रेम तक पहुंचता है, शांत वाला तो कहीं नहीं जाता। शक्कर का प्रेम अनुराग के प्रधान का अनुराग की सीमा तक जाता है,
हम प्रथम स्टेज पर,
किंतु उसमें भी सुबल इत्यादि का महाभाव को स्पष्ट कर देता है, वात्सल्य का अनुराग तक जाता है ये चरण, और रुक्मणी सप्तभामा इत्यादि का महाभाव तक जाकर के रूढ़ अवस्था तक जाता है, जिसमें प्रेम वैचित इत्यादि भी साधारण अर्थ में दिखते हैं। प्रेम वैचित माने क्या, प्रेम वैचित माने दोनों के संयोग आने पर भी मिलन होने पर भी ऐसे भावों के द्वारा भावित हो जाते हैं, जिसमें कि कृष्ण यहां नहीं है, यतम नहीं है, कहां गए कहां गए कहां गए, ये भाव इसको प्रेम कर, इसको रुक्मणी सप्तभामा में भी कुछ अंश तक दिखाया कि कृष्ण सोए हुए हैं अपने कलंक पर, सप्तभामा प्रभृति का विशेष करके आठ पर प्रणी का, और उन सब में सप्तभामा विशेष रूप से ये भाव रुक्मिणी जी का ऐसा भाव कि पूरी एक पक्षी विराज करती है, रात अपने पति से अलग हो जाती है, एक किनारे उसका पति दूसरे किनारे पर बड़े परम स्वर से क्रंदन करती है, तो ये दोनों कार्य हैं और तुम किसी लिए भी आप जैसे कृष्ण को छोड़कर के हमारे प्रियतम चले गए, हम उनके विरह में डूब रहे हैं, मानो तुम भी उनके विरह में डूब करके इस प्रकार से डूब रही है, विलाप कर रही क्यों ले रही हैं, और भी ग्रहण देकर के तुम्हें डूब रहा मुझे पूरा जाना तो कुछ नहीं कहेंगे, और उसके साथ साथ बताइए किस प्रकार से
बोल रही
है, कहा है
रो रही है,
और उसे कहे इसलिए इससे हम तो सब मैं रो रही है तुम्हें रो रही है। ये है महाभाव ने रूम अवस्था में प्रेम बल, किंतु गोपियों का जो प्रेम बल की तैसे कोटि गुना श्रेष्ठ है, उसमें कृष्ण सामने बैठे हैं कृष्ण की गोदी में बैठी हैं और कुछ ऐसा भाव आया अरे सखी कहां गए कृष्ण, कृष्ण कहां है, और उठकर के खोजने के लिए देते हैं इधर उधर दौड़ कृष्ण ने देखा और एकदम स्तंभित हो गए इसलिए प्रेम बच्चे तो तब तक हुआ, इससे भी आगे अगे भाव ये लोग में नहीं है, ये केवल गोपी में है, और इसमें भी ऊपर जब चले जाते हैं तो मोहन इत्यादि भाव चंद्रादी के सभी तक में भी नहीं, केवल ललिता इत्यादि भाव, और उससे ऊपर का विभाव एकमात्र स्त्री भाव से श्रीमती गादी का और कहीं वो उसे विचित्र भाव मिलन में वियोग में मिलन, ऐसी दशा जो किसी को भी संभव पर नहीं है। ये सबका वर्णन कुछ साधारण रूप में वो कर रहे थे जितना जानते, कोई जमीन नहीं है तो उस रस में रहने पर ही व्यक्ति उसका वर्णन करेगा, तटस्थ होकर के ये विचार आ रहे, ऐसा डूबा हुआ व्यक्ति उसमें नहीं ये सबका वर्णन करेगा, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी तटस्थ होकर के सुमद भाव का वर्णन कर रहे, इसलिए ये सबको नहीं तो यदि एक में डूब गए होते ना पर इस प्रकार से रोनी मैया यद्यपि बासव्य रस की मूर्ति है किंतु वर्णन कैसे करती है, वर्णन करती है, इसलिए यह असंभाव से आज ये कोई गवर्ण की बात नहीं, सभी जानती है किंतु वो भाव किसने के प्रति, यदि उद्धव जी वर्णन कर सकते हैं जिनमें ये भाव नहीं है तो दोष का कारण नहीं हो सकता, वर्णन कर सकते हैं किंतु वर्ण की एक भूली कणा भी नहीं हो सकती, एक गोपी का भाव नहीं, एक सखा का भाव नहीं, एक मयूर जैसे कृष्ण को देख करके नृत्य करता है वैसे ये नहीं कर सकते, इसलिए तटस्थ रूप में ये सब वर्णन किया तो वर्णन कर रहे, और वर्णन करते करते प्रेम में एकदम विभोर हो गई और सब रानिया भी विभोर हो गई, कृष्ण से रहा नहीं गया वो सभा खड़ी से उठ करके बलदेव जी भी उनके पीछे पीछे आए, जब वो घर में राजभवन में घुसने लगे सुभद्रा जी मां पर खड़ी थी ऐसे हाथ कर मैया भी मत जाओ, मैया ने मना किया निषेध किया, थोड़ी देर के बाद में कथा समाप्त हो जाएगी तब आप अभी भी हो जाएगा आपके सामने भी ये बातें नहीं हो सके इसलिए मना किया, और साथ साथ में बलदेव जी इसलिए नहीं हो सके, कृष्ण वहीं पर खड़े गए, बाएं तरफ में सुभद्रा जी के कृष्ण और दाहिने तरफ में बलदेव जी, सुनते सुनते वो भी एकदम गर्वित हो उठे, कृष्ण का पहले हाथ और पैर दोनों प्रेम से निकल गया, पहले हृदय पिघला और हृदय पिघल करके अश्रु के रूप में निकल गया, थोड़ी देर के बाद में करते करते प्रेम के द्वारा द्रवित होकर के एकदम ये शब्द हो गया और एकदम भाव में विभोर बलदेव जी की यही अवस्था हुई और सुभद्रा जी की यही अवस्था, सुदर्शन जी रक्षा कर रहे हैं नेता और भी गौर करके न जाने क्या हो जाता, नारद जी आकाश से देख रहे थे झट उत्तर करके आए हाथ जोड़ करके राजू प्रभु आप प्रसन्न है तो यही रूप जो मैंने देखा है यही रूप जगत के सामने आप प्रकट करके रखिए और जगत के लोग देख करके उनका जीवन साथ हो, कथा वहां पर समाप्त हुई, कृष्ण का धीरे 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 शरीर भी वैसा हो गया, कृष्ण के रूप में आए सुभद्रा जी और बलदेव जी अपने रूप में, उन्होंने कहा यह मस्त ऐसा ही हो मैं समुद्र के किनारे लीला के ऊपर में ये कथा उसमें जुड़ गई। अब जब जगन्नाथ जी की सेवा होने लगी तो जगन्नाथ जी ने कहा राजा को कुछ वर मांगो। उन्होंने राजा ने कहा जैसे आप भर देंगे तो यही कर दीजिए, मैं निसंतान बन जाऊं, हमको कोई निसंतान ना हो। जगन्नाथ जी ने पूछा कि क्यों, निसंतान किस लिए होना चाहता? इसलिए कि कोई भी हमारा लड़का या उस वंश में यह ना कर सके ये मेरी संपत्ति है जगन्नाथ मालिक न बने। हमारी समस्त हमारे राज्य का वैभव का जो कुछ मालिक है ये जगन्नाथ जी रहेंगे, मैं उनका सेवक हूं, ट्रस्टी हूं। और हम लोग उसी रूप में जगन्नाथ जी रहेंगे तब तक ऐसी सेवा करती रहेगी। तो वंश होने से हंसकर के मुस्कुरा मैं कहते तो एक बात करो ऐसा होगा। फिर कोई एक बात करिए उनको निष्कुत का बना दिया। वो जो पहले हमारे जो सेवा करता था नील माधव के रूप में तो हमारी एक महीने विशेष रूप से 15 दिन अनावसर और इसके बाद में ये एक महीना तक वो सेवा करेंगे। और उनके वंश में आने वाले कितने लोग हैं, नीच जाति होने से भी इसे वंचित नहीं रहेंगे। हमारी सेवा में भक्ति प्रधान ज्ञान अथवा पूजनता विद्या ये सब प्रधान कारण नहीं है, इसे तीनों का अधिकार रहेगा जैसे वो उस सेवा करें। और जिसने इनका पता लगाया वो विद्यापति के वंश में दो स्त्रियां हैं, उनकी एक है सवाई और एक है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी वाले से जो संतान पैदा होगी वो वंश चलेगा, वो लोग हमारी पूजा करेंगे और सब तरह से जो सब सोच से बात करें। और ये जो स्वरानी है इसके मन से जो ये लोग सुपकार होंगे, ये लोग रसोई बनेंगे बनाएंगे और उससे हमारी सेवा होगी। इसलिए सुपार या स्वाद अथवा वो लोग जनेऊ इत्यादि उनका नहीं होता, वो लोग ही सेवा करते हैं। और भी विचित्र विचित्र बातें उनको बरदान
रथ पर वही लोग चढ़ाएंगे।
तो लोग जब रथ पर चढ़ाते हैं ना तो जब तक नहीं आएंगे रथ पर नहीं चढ़ते। और उस समय जो राजा जो उनकी सेवा में नियुक्त रहता है वो जगन्नाथ जी की पूजा करेगा, झाड़ू देगा, केवड़े के जल से सिंचन करेगा, तब वो रथ में चढ़ेंगे और फिर रथ चलेगा अन्यथा नहीं। अभी आज से 15-16 वर्ष पहले गवर्नमेंट जब कांग्रेस की वहां पर बनी हुई तो वहां के मुख्यमंत्री और दूसरों ने कहा कि ये दलालों की ब्राह्मणों की क्या जरूरत है, राजा की क्या जरूरत है, झाड़ू देना होगा, झाड़ की क्या जरूरत है, लकड़ी की मूर्ति रथ में चढ़ाते हैं और लेकर के फेंकते हैं तो हम लोग इसको करा देंगे। भगवान में विश्वास नहीं होता, उन्होंने कहा जैसे सब काम अपने आप होगा, चलो राजा की जरूरत नहीं है, पूजा की जरूरत नहीं, बस राजा को नहीं बुलाया और उनको चढ़ाने वाले हैं उनको भी आदर नहीं दिया। तो पहले तो जगन्नाथ के मंदिर ही से निकल रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन लोगों को फिर मनाया चरणों में, जब भी छवा होना तो लोग आकर के उनको ले आए। अब ले आए तो अब रथ पर चढ़ाना सारा दिन लग गया, दिन भर थोड़ा सा ले जाकर ऊपर से छवा करके बहुत भार है। वो लोग चढ़ाते हैं 10-5 अपने पीछे से ऐसे चलते हैं और ऊपर से 10-5 क्या 50 फुट और रस्सा में बांध करके फेंक करके हाथों में कमर में और कहते हैं साले उठो
ऐसे ही गंदी गंदी गाली देते हैं जो चौबे लोग यहाँ पर नहीं जानते
अरे
और मैंने और मुस्कुराते हुए पांच चिबाते हुए जगन्नाथ जी ऊपर में चढ़ते तो चढ़ने में दिन था सब लोग मिल करके कहा कि भाई उस राजा को बुलाओ ये भगवान है ये देखो हमारे गवर्नमेंट से ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सभी लोग मिलकर के इनको नहीं चला सकते हैं देख लो सारी चेष्टाएं जब फिर हो गई तो राजा मिला राजा तो बहुत दुखी था जो उसको पूछा नहीं था अब वो राजा आया बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ करके उनकी आती थी और उनकी सब जब कर लिया तब फिर जब हाथ लगाया तो स्वस्थ और फिर तब सामने झाड़ू दिया बात लोग करके मानना पड़ता है इन्हें बात लोग करके मानना पड़ता है ये ठाकुर जी को कोई चलाता नहीं इसने चैतन्य चैतामृत में क्या लिखा है उनकी भावना हो रही है कि मैं आराधना जी और ये हमारी सहेलियां हैं हम लोग कुरुक्षेत्र से कृष्ण को वृंदावन में ला रहे आनंद हृदय मन बोल मन और कृष्ण को लेकर के कह रहे हैं से तो परानाथ पाई यहां लगी मदन कहन ये विनय में तड़प रही थी आज बहुत दिनों के बाद में हमारे भाई प्रियतम कृष्ण आज मिले सभी लोग उनके आंखों में जगन्नाथ जी के आंखों में आंख मिलाकर कीर्तन कर रहे हैं शिवानंद जी पर बतला रहे थे सात दलों में विभक्त होकर के चौदह मार्ग मदंग ये ऐसा नहीं हम भी जब आए तो देखा जो इसका डबल और मोटा और एक बार पीछे जब दिया ना ऐसा मेघ गर्जन कर रहा और एक साथ में इतने बज रहे हैं वैष्णव हरि का पागल वैष्णव लोग पागल हो गए और आनंद से छिड़कने लगे महाप्रभु सातों दलों में घूम करके कीर्तन कर रहे हैं सात रूप धारण करके एक साथ में ये कोई किसी ने नहीं देखा प्रताप प्रभु जी ने जगन्नाथ का महाप्रभु दो नहीं है एक ही है किंतु आज जगन्नाथ जी भी अपने ही नित्य को देखकर के विस्मित हो रहे क्यों विस्मित हो रहे हैं जगन्नाथ जी अकेले जगन्नाथ कृष्ण है और महाप्रभु क्या है गधर के साथ में आज उनके जितने भी भाव हो रहे हैं नित्य हो रहे हैं वो सब राधा जी के भाव से हो रहे हैं आज राधा जी के भाव को देख करके वो विस्मित हो रहे हैं और जगत भी उसमें विस्मित हो रहा है उनके भाव को देखकर जो कभी जगन्नाथ जी ने नहीं देखा आज द्वारका में रहते हैं सब समय के लिए देखेंगे कभी नहीं उनको देखे आज ये देख करके भाव में विस्मित हो गए उसी को यहां पर वर्णन कर रहे महाप्रभु जी कहते हैं ये धुआ का धुआ माने क्या धुआ कहते हैं एक कीर्तन में जो पहली लाइन आधी होती है उसको कहते हैं धुआ धुआ माने धुआ
जिस पद को बार बार आवृत्ति की
जाती है जैसे राधे जय जय मां भवदयित गोकुल तरणी मंदर महित राधे जय जय करुणं कुर्मयी करुणाभरीते शमकसनातन वर्णित चरिते राधे जय जय मां ये ध्रुव है तो ये ध्रुव द्वार है और इसके आगे पीछे की लाइन होगी इसमें वही दो लाइन दिया है से परमना वायु जहां लगे मदन दहन भूमि कौन कीर्तन कर रहा है सर दामोदर जी का कैसा कर्म बैल को भी मात करने वाला उनका उच्च स्वर से करते और महाप्रभु पत्थर पर विभावित हो रहे हैं। जैसा ही महाप्रभु का भाव देखते हैं इसमें ये तो मूल है और इसके साथ साथ में और लाइनों को लगा रहे हैं और लगा करके कीर्तन कर रहे हैं, एकदम प्रमत्त हो रहे हैं। इस तरह से गौर देवी पाछे चले, श्याम है स्थिर, गौर आगे चले, श्याम चले धीरे धीरे।
होगा
पूरा कीर्तन हो सकता है तो धुआई दवाई तो कहते हैं धुआ दवाई। गौ चले जमीन, गौ चले पाछे, राधा जी चल रही है। सोचा मैं यदि ना जाऊं तो कृष्ण जाएंगे कि नहीं, पैसा करने के लिए पीछे हो गए। जब पीछे हुए तो श्याम मुस्कुरा करके और हजारों हाथियां हजारों लोग खींच रहे हैं, जगन्नाथ जी तस्य वश में। जब नहीं चलाए दो चार घंटे बीत गए, सब लोग हैरान हो गए, थक गए जा, तब ये मुस्कुराने लगे और माफ हो गई मन राधा जी। हम मुस्कुरा करके हाँ अब मेरे वशीभूत हैं, मैं स्वाधीन भक्त होता हूं ये ध्यान सब। और झट जहां आगे आ गए तो क्या कर रहे हैं, अब गौर आगे चले, शाम चले धीरे 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 चलना धीरे धीरे क्यों उनके प्रेम को देख करके भाव से विभोर हो जाएंगे, कारण जल्दी से नहीं चल सकते। हवा धीरे धीरे क्यों चलती है, सुगंध और इसके द्वारा भार होकर ऐसे यहां पर ये जगन्नाथ जी भाव में विभोर हो गए, चलने की सामर्थ्य नहीं है लेकिन तो अब चलना है। धीरे 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 कितने भाव के अंदर में आ रहे होंगे, जो भाव आ रहे होंगे राधिका जी में वो सब इनमें संक्रमित हो रहे हैं, रसराज और महाभाव है। इसलिए ये रथ यात्रा प्रेम का प्रसंग है, बड़ी भक्ति का प्रसंग नहीं है। महाप्रभु के आने के पहले तक वैदिक भक्ति का प्रसंग था और अब भी वैदिक भक्ति को लिए वैदिक भक्ति का है, किंतु ये पूरा प्रसंग क्या है, प्रेम की पराकाष्ठा साधारण नीचे का ये इसमें कुछ भी नहीं है। अब एक मत गौ श्याम गौ और श्याम में गौ माने महाप्रभु राधिका जी और श्याम जगन्नाथ जी, श्याम माने यहां पर हो गए वसुदेव नंदन और गौ कौन है, विश्वानु महाराज और नंद बाबा के दोनों मिलकर के नंद बाबा के लड़के नंद नंद और राधिका जी उनकी विश्वानु की वो बोली श्याम और गौ मिलकर के चैतन्य महाप्रभु हुए गौ हुए, अर्थात उनके भाव के द्वारा आकांत हो गए। ये दोनों ठेला ठेली स्वरथे श्यामे रे राखे गौ महाबली, स्वरथे मैंने
अपने मनोरथ
अपने मनोरथ में अपने वशीभूत करके श्याम ऊपर से मालूम होता है कृष्ण ने किया किंतु कृष्ण ने नहीं, श्रीमती राधिका जी ने जगन्नाथ जी को वशीभूत कर दिया। चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं नहीं तो ये प्रेम महाबली है, प्रेम ही कृष्ण को और सबको चलाता है, प्रेम यहाँ पर स्वयं करता है, कृष्ण और राधा और गोपियां यहाँ पर करता नहीं मानी गई, राष्ट्र भी वैसे ही नचित नचित प्रभु हैदा भाव को भावांतर हस्त तुलिस को पड़े इत्यादि। इसके बाद में आप चले हम लोग कृष्ण ने कहा था एक बरस तक राजभवन में रहते रहते मेरा मन नहीं लग रहा, तू आदेश दे दो तो मैं थोड़ा सा एक दिन के लिए आ जाऊं, कल आ जाऊंगा, जरा वन में झाड़ियों में घूम करके आ। उन्होंने देखा कि कोई बात नहीं, अभी 14-15 दिन तक तो बुखार में थे, पेट खराब हो गया था, मन खराब होना स्वाभाविक है। बहुत जोर से स्नान करा दिया और स्नान में बुखार भी होगा, पेट भी कपड़ा हो गया। लखीमी जी स्वाई काढ़ा बना रहे हैं कि क्या रस बना रहे, पाचन बना रहे हैं, उनको खिला रहे हैं और कुछ स्वस्थ हो गए। अच्छा तो जाओ थोड़ा सा भ्रमण करने गए। कृष्ण ने छल बनाया, जात्रा का छल किया, ये छल किया कि उसमें सुभद्रा जी को और बलदेव जी को बैठा दिया। इसलिए बैठा रहा उनको यकीन दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, मैं यही आसपास में घूम करके लौटा। किंतु बलदेव जी को सुभद्रा जी को लेकर के ये एकदम सीधा वृंदावन में पहुंचे, बीच में रुके नहीं। और वो घर में बैठी हुई वो दिन का आदेश दिया, उस दिन निश्चित थी, किंतु दूसरा दिन सवेरे हो गया नहीं है, शाम हो गई, रात हो गई, नहीं है। फिर दूसरा दिन गया, तीसरा दिन उन्हें बीत गया, चौथा दिन बीत गया, अर्थात द्वितीय के दिन गए हैं। द्वितीय बीत गई, तृतीय, चतुर्थी बीत गई, 3 दिन हो गया ना। तब ये हो गया कि कहां गए, कहां गए, कहां गए। और तब उनको कुछ क्रोध हुआ, पहला क्रोध जैसे ये गया तो हमें क्यों मिले गया, पहला ये क्रोध। ये किस अवस्था में होता है, जिसको यदि कोई प्रेम करता है, प्रीति करता है या करती है कोई, और उसे बिना बुला करके छल बहाना करके, यदि वो बाधक नहीं है तो भी नहीं पूछा है, या तो साथ ले जाना चाहिए था तब तो ठीक होगा, तो साथ कर ले गए उनको और हमारे साथ में छल किया, नहीं ले गया, भाई और बहन को ले गया दिखलाने के लिए हमको। और ये कहां गया, अच्छा लक्ष्मी जी को पता है कि नहीं, ये कहां गए,
पहले समझ नहीं सभी पीछे समझ।
इसलिए यहां पर कहते हैं हेरा पंचमी दिन, एक दिन में ये होगा नहीं, कल दिन को बात कर।
अभी कितना बचा, 7:35
भूमिका बांध कर रख लेते हैं इसका भाव। हेरा पंचमी दिन आएगा, आज पंचमी है,
आज पंचमी है ना, पांचवा दिन उनका पंचमी किसी ने नहीं, पांचवा दिन,
पांचवे दिन काशी में समय को राजा ने कहा, आज पहले जो हेरा पंचमी होती थी हेरा पंचमी उत्सव, आज इसे सैकड़ों गुणों से रूप में करो, सुंदर से सुंदर राजकोष से और ठाकुर जी के भंडार से जितने स्वर्ण और मणि और हीरा जरी अलंकार उसमें लक्ष्मी जी को सजाए और सुंदर रूप से ये सफल पार्टी के साथ में आज हेरा पंचमी होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे ही किया होता है। महाप्रभु सवेरे कहां रहते थे, समुद्र स्नान करके और जगन्नाथ जी के मंदिर के पास ही में आई टोटा, जगन्नाथ बल्लभ टोटा में, और वहीं से उनका दर्शन करने जा रहे। मंगल आरती में उनका दर्शन किया और आज हेरा पंचमी है इसलिए वहां आ गए। कहां आए, जगन्नाथ जी के मंदिर। क्यों आए, वहीं से वो जाएगा शोभा यात्रा, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें अभिनय होते हैं कितने प्रकार के, वहां से सुन करके देख करके कि कैसा योग होता है पूरा, पहला वर्ष था इसलिए वो सब देखेंगे। इसलिए अपने गणों के सही, गणों के सहित मैंने क्या
सब दामोदर जी,
सब दामोदर आया, रामानंद जी, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य,
सुभाष पंडित,
सुभाष पंडित, गदाधर पंडित इत्यादि जितने भी उनके परिकर हैं, पूर्व देशवासी और गौड़ीय देशवासी,
सभी लोगों को साथ लेकर के। अब ये होता है कब? ये होता है रात में 12 बजे, ये लीला होती है 12 बजे रात। लक्ष्मी जी उस समय नहीं निकलती, महाप्रभु जी वहां पर आए, लीला चले आईला प्रभु भक्त अनुसंगे, देखित का देखित उत्कंठा जरा पंचमी रंगे, कैसे रंग से उत्सव बनता है, कौन कौन क्या काम करता है, कोई लक्ष्मी बनता है, कोई लक्ष्मी के पक्ष वाले, कोई गोपियों के पक्ष वाले, कोई गोपी बनती है, और क्या क्या लीलाएं होती है देखेंगे। कश्मीर से प्रभु ने बहुत आदर करिया, स्वर्ण सह भाव स्थाने बसाए, भालो स्थान में क्या
जहाँ सब दिख सके, ये सब
अच्छे स्थान में जहाँ से ये सुन सके और देख सके। उनमें जो वार्तालाप होगी यही वार्तालाप ही प्रधान चीज है, भक्त मिलाप में क्या चीज प्रधान है, दोनों का मिलना। क्योंकि इस मिले में भी वो प्रसंग कैसा है, उनमें बातें क्या होती है, ये उसमें प्रधान चीज
है।
तो यहाँ पर वही सुनना है महाप्रभु, क्या क्या भाव और लक्ष्मी जी का क्या भाव, इन लोगों का क्या भाव, रस विशेष प्रभु ने सुनते हो जमा ईश्वर हासी प्रभु स्वरूप विषय। ये पुरी में भी जगन्नाथ नीलाचल मंदिर में ये बात हो गई, और वहां से ये सर्वध्वज करके लक्ष्मी जी को लेकर के बहुत सुंदर प्रोसेशन करके ये निकलने वाले हैं। अब थोड़ी सी देर थी, उसी में महाप्रभु जी स्वरूप नाम होने से पूछा, क्या पूछा, यद्यपि जगन्नाथ करे द्वारका विहार, जगन्नाथ जी कहां विहार करते हैं, विहार के पात्र कौन कौन है, सत्यवाह रुक्मणी इत्यादि जितनी भी रानियां हैं, वसुदेव जी देवकी जी और सब लोग हैं, उनके सखा लोग हैं, इनके साथ में विहार कर रहे हैं, तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं, सहज प्रकट करे परम उदार, वो सब लीलाएं प्रकाश करते हैं, तथापि बसर मध्य हरे पास, बस में एक बार वृंदावन देखने की बड़ी उत्कंठा होती है, और इसलिए वृंदावन में वो प्रवेश करते हैं। वृंदावन में क्या, वहां पर सुंदराचल नाम का एक स्थान है, जिसको रानी के नाम से विचार विचार मंदिर का 9 दिन के लिए हम आ गए, इसलिए वो कह रहे हैं ये पवन मन वहां पर बगीचे हैं, विशेष तरह का बगीचा वहां होता है, किस चीज का, सुपारी, सुपारी में क्या नारियल, और जगन्नाथ मंदिर के गुंडी, जगन्नाथ मतलब बालिका में ऐसा कोई फल और फूल नहीं है जो वहां पर नहीं है, तो वो उनको देखकर के जाते हैं ये वृंदावन है, बाहर बैठे करे रथ यात्रा छल किया, किसके लिए छल,
लक्ष्मी जी के लिए,
और छल किया किया भाई बलदेव और सुभद्रा जी को बैठा, भाई के सामने गोपियों से नहीं मिल सकते, और उसमें भी बहन है, बहन के साथ में पत्नी के साथ में बैठ करके कोई रंग करता है, यह संभव, इसलिए इनको साथ में बहाना के लिए लिया, और सुंदर चले जाए प्रभु छाड़ी नीलाचल, नीलाचल को छोड़कर के सुंदर चले, और वहां क्या करते हैं, नाना पुष्पो दैनिक जथा खेले रात्रि दिने, लक्ष्मी देव संगे नहीं लय की कारण, बात यहां पर इसमें नहीं बतला है, किंतु वो बात इसमें यह है, सुंदराचल में गए अतः वृंदावन में गए, नंद भवन में गए, मैया के पास में सुभद्रा जी को रख दिया, और पिताजी के पास में सफान बाबा के पास में बलदेव जी को भैया के साथ में या सखाओं के साथ में उनको लगा दिया, और अलक्षित रूप में पुष्प उद्यान
कमल की पंखुड़ी का जो बीच वाला भाग है वो नंद भवन है, और पंखुड़ियां जो है ना उसका ऊपरी भाग जो है वो वन है, द्वादश पर्व यहां पर कृष्ण की ये सब लीलाएं होती है। ये कृष्ण ने ऐसे किया कि किसी को भी पता नहीं चला, सुभद्रा जी को भी नहीं, बलदेव जी को भी नहीं, मैया पिता जी को भी नहीं, और वहां पर पीला तो लक्ष्मी जी को ये पता नहीं है। जब बलदेव जी भी वहां पर नहीं पहुंचे और जो ये भी नहीं जानते हैं, इसलिए स्वरूप है और उनको तो बड़ा बोध हुआ और सैन्य सजा करके वहां पर जा रहे और क्या किया, रथ को तोड़ने की चेष्टा की, और जगन्नाथ जी के जितने भी परिकर थे लक्ष्मी जी के परिकरों ने उनको बांधा, मारपीट किया, महापुरुष जी कहेंगे ये ऐसा कैसे मान, मान माने क्या होता है, मां
प्रेमी प्रेमिका के स्नेह ऊपर दिखाने को स्वच्छिल दिखाने को
मान होता है, मान पाने की इच्छा हमको मनाए को, तो रुझना माने क्या, रुझ जाना माने वो मान की इच्छा से जो हमारा ये प्रशंसा करे, प्रतिष्ठा दे, हमको मनाए, हाथ जोड़े, इसलिए उसको मान कहा गया। तो ये मान चाह रहे उन्होंने अपना अपमान समझा, हमको नहीं ले गए और उनको भाई को ले गए दिखाने के लिए, और कहां चला गया, तो ये क्रोध नहीं हुआ जैसे वृंदावन में गए हैं गोपियों के पास में और खेल रहे हैं, इसलिए नहीं, उनको तो पता ही नहीं है, उनको तो माफ इसलिए होगी अपने साथ में क्यों नहीं लगे, आप चार दिन हो गए, पंचम दिन आज हमें हुआया और लौटा नहीं, इसलिए उनको अब ये सम्मान का प्रकार पूछेंगे और बताएंगे आज नहीं, ये सब इसी तरह से रथ यात्रा प्रेम का प्रसंग है, इसलिए इन चीजों को समझ करके हम लोग भी कृष्ण के प्रति ऐसी भावना करेंगे, ये है भजन की परिकाठी। जो संसारिक कर्तव्य में लगा रहेगा इसके लिए चेष्टा नहीं करेगा समझने के लिए, इन भावों को एक उपाख्यान एक कहानी समझ करके इनसे कुछ भी लेना देना नहीं, और जब हम इसको समझने की चेष्टा करेंगे फिर से जो इस तत्व को जानते हैं उनकी रगड़ रगड़ करके सेवा करेंगे तब विधि परिपाते न परिप्रश्न न सेवा, परिप्रश्न हो पहले, परिप्रश्न तो हो, परिप्रश्न तो आता नहीं, सेवा की भावना भी चाहिए, मैं अपने को सर्वस्व देकर के सेवा करूंगा, और तद विधि परिपाते न परिपात ऐसी भीतर की भावना हो, मर मिटेंगे उसके लिए, जो कुछ करना है इसके लिए करेंगे, इसका नाम है भाई भजन, उदासीनता भजन नहीं है, गया तुम घर सुन लिया बस हो गया ऐसा नहीं, इसको सुनने के बाद में हम विचार करेंगे, इसको देखेंगे, इसमें लगे रहेंगे, इसके लिए जो हमारे उपदेशामृत में पहले से जो आरंभ करके जो भावनाएं हैं उनके साथ में हम चीजों को हृदय में धारण करके चेष्टा करें, ऐसे में जैसे एक बार सुनिया हो गया, विशेष करके ये वैदिक भक्ति से कितनी उन्नत चीजें ये सब, इसी का नाम है भजन, इस भजन के लिए हम लोग हैं, इसमें जब ये रुचि नहीं है तो हमारे जीवन निरल ये सब, इसी के लिए ये सब कुछ है, इन सब भावों तक पहुंचने के लिए, इसलिए जो नीचे की बातें हैं ये ऊपर केवल पेड़ का फल लेने से नहीं होगा, पेड़ तो लगाना पड़ेगा, उसको सींचना होगा, बढ़ेगा, उसमें फल फूल डालिया पत्ते लगेंगे, तब फल पकेगा, तब फिर लेंगे, इन्हें नीचे की सभी व्यवस्थाएं करनी होंगे, साधन भजन भी वैसे करना होगा, हम सब कुछ कर रहे हैं किंतु साधन भजन के लिए ये सब कर रहे हैं, अर्थ प्रतिष्ठा कोई और चीज स्वार्थ इसमें नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम ये सब नहीं कर रहे, इसलिए ऐसे हम लोग चेष्टा करेंगे ये भाव हमारे हृदय में आए और उसके के प्रति हम भक्ति में लगा करके अपने जीवन ये सर्व यात्रा का ये प्रश्न
के साथ में जो लीलाएं हैं राघवों के
भगवत अमृत में पढ़ने से ये सब मालूम होता है, कैसे उनकी उत्कंठा रंगलैया करती है कृष्ण जी, तुम तो नहीं जाता है कृष्ण, तुम जाएगा नहीं, ऊपर से तुम दिखलाता है कि वैसे तो तुम्हारा कृष्ण आते हैं, क्योंकि जगदाथ में तुम्हारा स्थिति होती तो बछड़े मर रहे हैं, गाय मर रही है, बोलते हैं पूजा में कर रहा है, अब तुम जाता नहीं है, ऊपर से आता पड़ता है, मानो तुमको कितना दिया जाता नहीं है, ठीक महिला ये ठीक बात कर रहा है, मैं भी जा रहा था, इनको कितना समझाए कि तू गएंगे, मैं गया वहां देखा बछड़ों की स्थिति, गायन की स्थिति, ज्वालों की स्थिति, गोपियों की, गोपियों की स्थिति देखी, बिना इनके गए वो बच नहीं सकते, धीरे 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 ब्रज एकदम उजाड़ हो जाएगा, उजाड़ तो हो गया है, जमुना नदी से तो गई है, और विराट गोवर हम तो कितने समुद्र अपना तीन ऊपर के लिए सात माइल, और वो खंड खंड में विखंडित होकर के और कितने नीचे आ गए हैं, उस पर चढ़ करके कुछ गिरने से मर गए, और जमुना में डूबने लगे पानी पीने, नहीं तो वो बड़ी सुखी हो जाती, कृष्ण इतना सुनते ही निश्चित होते उनको इस रूप में देखकर के बलदेव भी फिर ब्रह्मा को नौ वृंदावन बनाना पड़ा, और फिर उनको उठाने के लिए तरह तरह की ये सब सनातन गोस्वामी ने इन सब चीजों का ऐसा सुंदर वर्णन किया है, इसी को लेकर के पीछे से हमारे रूप गोस्वामी ने भक्ति गोस्वामी से नहीं विकल्प और ललित मार्ग इत्यादि सबको किया, इसीलिए वो सबके गुरु माने जाते हैं। तो वर्ष में एक बार अंधकार राह नहीं जाता, जाने की तो सबसे इच्छा होती है, किंतु अब रंग नहीं लाते हैं वृंदा वर्षों में एक रूप वर्ण कर, अब वहां पर जब नाटी लीला करते हैं वृंदावन में जाएंगे माने कहाँ जाएंगे, सुंदराचल, सुंदराचल माने वहां पर जाते हैं, वो वन के भीतर में अभी हम लोग देखते हैं जगन्नाथ वल्लभ बालिका हम लोग देखते हैं, वहां पर तो पुष्प उद्यान है, किंतु पहले वहां से लेकर के सभी प्रभावी उद्यान था, अभी भी नारियल के पेड़ सब हैं, तो बाकी में सब आदमियों की बस्ती हो गई, नहीं तो वहां पर सब उपवन था, उसको उपवन को ही वृंदावन मान लिया, जैसे महाप्रभु को वन देखित हम है वृंदावन यही वृंदावन, और बालू की ऊंची चीनी देख करके उनको मालूम होता है यही जहां नदी देखे तहां माने कालिंद जी, नदी को देख करके कालिंद जी मानते हैं, हम लोग की दृष्टि से ये कल्पना है, कल्पना है हो सकती है, यथार्थता इसमें नहीं, उनको ये धन हुआ जिसको कीर्तन कहते हैं, धन नहीं है, ऐसे किसी चीज में डूब जाना है, जैसे तालाब को देख करके गोपियों को कृष्ण का प्रण होता है, मेघ को देख करके उनको प्रण होता है, ऐसे ही महाप्रभु को ये भ्रम हो गया, किंतु क्या समुद्र ही जमुना बन गया, क्या वही जिला जो है सतम पर वो बन गया, गोवर्धन बन गया, वही जगन्नाथ बल बल्लभ का ये क्या वृंदावन बन गए, हम लोगों की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंची, हम लोग बड़े समझेंगे इनको कम, किंतु उन्होंने यथार्थ रूप दी प्रतिमान तुम्हें साक्षात भजन मोहन जन्म, हम लोग जाकर के देखेंगे महाप्रभु को जगन्नाथ देव देखने से दो प्रकार के भाव आते थे, जब उन्होंने बलदेव जी और सुभद्रा सहित कृष्ण को देखा तो उन्होंने देखा ये द्वारका में कृष्ण है, ऐसी भावना होगी उस समय नहीं कि कृष्ण गोपियों के साथ, और जिस समय में जगन्नाथ जी को कोई जगन्नाथ जी को देखा पार्टी में खड़े उन्होंने को नहीं देखा, और उसने क्या देखा बंसी बजा रहे हैं दोनों कुछ देखा, कमल नयन कृष्ण को देखा, कमल नयन है ना वहां, और ये और लोग देखते हैं कमल नयन है कि गोल गोल
और वो गिरोह में मतलब करते जहाँ प्रधान करते थे वहाँ गड्ढा हो गया और कैद यहाँ रहता है वहाँ पर गड्ढा का और रोने के आंखों से आंसुओं से गड्ढा जिन्हें कुछ पत्थर को लेकर के उनके वहाँ पर रख दिया जहाँ पर चरण पानी पानी रखी गई है वही उनका चिन्ह है किसी पानी पर ऐसे ही तुमको देखकर किस अच्छा अनुभव ऐसा होता था भ्रम नहीं हो पाता भ्रम जैसे हम लोगों का होता है एक चीज में दूसरी वस्तु की कल्पना सुक्ति में रजत और रज्जु में सर्प ऐसा भ्रम नहीं होता था कि हम लोग इसे आगे नहीं जा सकते इसीलिए माँ उनकी ने मैया को और कृष्ण ने गोपियों को संवाद दिया था उसको भ्रम मानना मैं जाता हूं मैं जाता हूँ मैया का किया हुआ मैं सब कुछ रसोई खाता हूँ और मैया मानते हैं स्तुति कहाँ के बारे में रक्त यात्रा और सुन बना चले जाए प्रभु छाड़ी मिलाकर मिलाकर मैंने मिलाकर के मंदिर को छोड़ करके द्वारकापुरी को छोड़ करके या उसको समझ लो कुरुक्षेत्र छोड़ करके कुरुक्षेत्र उसको मान लो छोड़ करके ये वृंदावन में जाए ना यहाँ पर तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जगन्नाथ जी को सुभद्रा बलदेव जी को रथ में खेच करके माँ प्रभु जी देख रहे हैं क्या सही तो प्राणना माई जहां लगी मदन है तब गोपियां को खेच करके जब लक्ष्मी जी से पूछा कि मैं जाऊं मेरी तबियत 15 दिन खराब थी और मन नहीं लगा था सब कुछ बालिका में जा रहा हूं मानू उन्होंने सोचा जगन्नाथ बल्लभ नायिका बालिका में जाए उन्होंने कभी अच्छा कर रहा हूं और उनका जैसे कोई चिंता की बात नहीं है मेरे बड़े भैया और बहन जाए ये क्यों कहा और उनको साथ क्यों दिया उनको विश्वास दिलाने के लिए कुछ न बड़े भैया के साथ में लोगों के साथ में मिलन नहीं हो या किसी से ऐसा हो नहीं और साथ में बहन है छोटी उसके सामने भी किसी से दिल्ली मस्तरा और ये सब चीजें नहीं हो इसलिए उनको विश्वास हो गया पहले उनके मन में आया कि हमें छोड़ करके हमको भी करके क्यों मिल जाए क्यों मिल जाए इसलिए कारण नाना उसको ज्ञानी तथा खेले रात्रि जी ने सुंदराचल में गए अर्थात कहां गए नंदभाव में गए नंदभाव में गए जहां भी हो नंदभाव में गए यशोदा भवन में गए वहां जाकर के वहां से किंतु उसको ज्ञानी तथा खेले रात्रि जी उसको ज्ञानी बलदेव और सुभद्रा को पिछले लाए थे यात्रा छल के लिए अभिता में रथ यात्रा छल उनको लाया जैसे कि किसी को उन पर श्रम दे रहा हूं अच्छा इसमें यहां पर ये चीज नहीं है उसको उतना खेच करके ले जा रही है और कुछ नहीं जा रहा इसमें ये वर्णन किया गया यहां पर ऐसा भी वर्णन और अलग से यहां पर वर्णन किया जाए कि वर्णन हो गया गोपियां गई है कुरुक्षेत्र कृष्ण से मिलन हुआ पहले मैया बाप से मिले नंदा बाप को सुना इसके बाद मैया ने सुयोग कर दिया द्रौपदियों से मिले देवकी जी वहां पर कुछ विघ्न कर रही थी उनको रोहिणी मैया ने हटा दिया मिलने के बाद में कृष्ण से मिलनों का वार्तालाप सचमुच में तुम लोग मुझको अर्थ करके सुन वो क्या क्यों सुन रहे ऐसा था अपने तरफ से यह गली दे वो क्या चुपचाप रो रहे जब गोपियों गोपियों से बोले देखो मैं तो कहीं अलग नहीं मैं तो जहां भी सर्वत्र हूं तुम्हारे अंदर बात कर लू हमारा ध्यान कर लेना विशेष करके भक्ति ही भूटान अमृत पाए पर अतिजीवों के लिए अमृत है। अमृत माने अमाता प्रदान करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है, उसे आगे मरने का प्रश्न वो देने का। इसके बाद में और क्या करें, भक्ति
वही भक्ति निष्ठा जगह से स्नेह भगवती नाम उदाहरता है वही भक्ति
जिनका नाम अमृत पाया है। यहाँ पर भक्ति रूपी अमृत प्रेम झोंकने इसे क्या होता है, भगवान इसे बहुत प्रसन्न होते हैं और संतुष्ट होते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने इसे बढ़कर के कुछ और प्रेम इसके बाद में राग, एक ये भी स्तर है। प्रेम के बाद में राग होता है, राग के बाद में अनुराग और इसके बाद में स्नेह मान और प्रण और एक होता है जैसे प्रेम स्नेह मान और प्रणय मत और प्रणय और इसके बाद में मान और एक पर होता है ऐसे जब तक अनुराग नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा तो प्रश्न कैसे होगा, चित्र कैसे ग्रहित होगा, इतने वो भी एक क्रम है। अब दूसरा क्रम है जैसा कि यह वर्णन किया गया, ये दोनों चीजें जब भी मैं जब भी प्रकाश कभी ऐसे सुना तो कभी छात्र कभी कभी क्रम ऐसा होता है और कभी क्रम ये दोनों क्रम भी ठीक कोई गलत नहीं। तो वो वहां पर जाकर के पुष्प उद्यान में दिन रात खेला कैसे खिला करते हैं तीनों को मालूम नहीं और ये मैं बदला रहा हूं। एक प्रक्रिया है ना यात्रा की, गोपियां जाकर के कृष्ण को मनोरथ पर चढ़ा करके और इसी का इसमें वर्णन और फिर यहां पर देखने से मालूम होता है कि कृष्ण ने उनका आदेश दिया है तो किसका, लक्ष्मी जी का, बलदेव जी को और सुभद्रा जी को और अब तक दांत में रख चल रहा है और कैसे घोड़े जो उनके चार हैं वो वहां पर कोई लोक संघटका कोई विचार यहां पर नहीं है, किंतु पहले भी इसमें जो विचार किया है पिछले रथ यात्रा में भी ये दो भाव है जब गंभीर रूप से विचार किया जाता है। कृष्ण अपने आप गृहस्थी से तंग होकर के मन को बहलाने के लिए जा रहे हैं अपने मन से और लक्ष्मी जी को धोखा देने के लिए ठगनी के बहाने बलदेव जी को दे दिया और बड़ा दिखलाने के लिए और इस यात्रा में जो गोपियां उनको खेच कर ला रही है सुभद्रा बलदेव जी को लाएंगी इसका नहीं वो किसको ले आ रहे हैं मनोरथ पर, गोपियों को मनोरथ पर सुभद्रा जी और बलदेव जी चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ सकते और सही तो पारण ना पाई नहीं बलदेव जी के साथ में रहने पर शांत चक्कर अथवा और सब तरह की चीजें होंगी वृंदावन का कोई भाव नहीं होगा। और जब गोपियां खेल करके ला रही है कुछ क्षेत्र से तो हमारे समझ से वो बड़े का भाव ले करके रथ पर बैठा करके लाने उनके मनोरथ पर कैसे बैठाएंगे मोर मन आने मन
आने बदल मन
आने बैठ मन मोर मन मने बने एक कई मानी कनक कुमार चरण द्वय
मधुकरा उदय सरोत्तमा पूर्ण पिता मानी
इसलिए वहां पर ले जा रही है वहां पर तो देवी को कैसे मनोज पर चढ़े ये संभव पंकज जी सड़क पर बैठा रही है और खेच रही है उसको गोपियां उस सड़क पर वो बैठे रही हूँ कि नहीं बल गई थी इसलिए हमको ऐसा कुछ लगता है इसमें कुछ विशेष बातें गंभीर रूप से विचार करने के लिए देखने पर लिखा ऐसे एक पहले से नहीं बात कि विचार करने से जब रस का विचार हम लोग करते हैं कहां पर रस पूरस हो जाता है कहां पर रस रसाभास होता है कहां पर शुद्ध रस होता है इस विचार से देखने से वही स
स्वरूप दामोदर जिसे महाप्रभु प्रश्न के छल से कहते हैं पूछते हैं और स्वरूप दामोदर बता और लोग भी बैठे हैं शिवाज इत्यादि में बैठे हैं किंतु शिवाज जी प्रसन्न हो रहे हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं इसलिए कि लक्ष्मी जी को मार पीट रही है और दंड रही और सिंहासन पर बैठी है और सब गोपियां उनके चरणों में लक्ष्मी जी का देखा भाव क्रोधित हो रहे हैं किस मान में मान नहीं है मान मानने से क्या होगा रुद्रश आएगा यहां पर और रुद्रश है एक में जीव रस है और उसको तो रही है रस का दोष क्या है तुम अपने पर बैठा करके उनको क्यों लाए ये तो भावो जैसे रसोई नहीं जल रही और एक आदमी रसोई बना रहा है गिली लकड़ी ऊपर में चढ़ा दिया बर्तन और पानी भी दे दिया और नीचे से लकड़ी जला रहे वो लकड़ी जल रही है एक मिनट दो मिनट चार मिनट दस मिनट हवा दे रहे ऐसे करने वाले किसी तरह से किरासन तेल भी डाल दिया तभी जलाया नहीं जल कठोर मोबाइल करते लड़की हमारी मानी समय गई और उठा करके सबको जहां काटते उसका दोष क्या है। इसी तरह से इनको ये कह रहे हैं लक्ष्मी देवी संगे नहीं लय की कारण है स्वरूप है सुन प्रभु यह कारण वृंदावन की रहते लक्ष्मी नहीं तो ये क्रोध जो है ये क्रोध हो गया क्रोध और मान में बहुत अंतर है उसी जगत की छाया मूल तो ही है यहां पर हम जो क्रोध करते हैं वही प्रेम का ही अधिकृत रूप है क्रोध उस जगत में वो मान कहलाएगा